हम लोग आज भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के 6ठे और 7वें श्लोक की चर्चा करेंगे। तो आप लोग कृपया भगवद गीता को ओपन करके मेरे पीछे बोलिए। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम् समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इससे पहला वाला श्लोक आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है क्लेशो धिकतरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, है ना पिछला वाला श्लोक। और यहाँ पे श्लोक कैसे एंड हो रहा है, मय्यावेशित चेतसाम। अंतर देख रहे हैं, और आप उसमें देख रहे हैं कि दोनों में अंतर, जो व्यक्ति की चेतना ब्रह्म में आसक्त है उसके लिए क्लेश ही क्लेश भरा हुआ है। और हमने आचार्यों ने एग्जाम्पल दिया था स्थूल तुषाव घाती नाम, स्थूल तुषा मतलब स्थूल मतलब मोटा, भूसी को कूटने से क्या मिलेगा, केवल परिश्रम मिलेगा। तो जिन व्यक्तियों का ब्रह्म में चेतना आ सकते हैं उन्हें केवल मेहनत मिलेगी, फल नहीं मिलेगा। और इसमें क्या लिखा है मय्यावेशित चेतसाम, और दूसरा शब्द देख रही है भवामी न चिरात पार्था। इससे पहले हम शब्दों को विचार कर लेते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि, ये तो मतलब देखो इन लोगों को बहुत कष्ट मिलेगा, लेकिन ये जो भक्त हैं इन लोगों को यानी वो लोग जो अपने सारे कर्मों को कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं, मई सन्यस्य मत परहा, मत परा भगवान को परम वस्तु परम लक्ष्य मानते हुए उन पे ही अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, इंद्रियों को लगाए हुए हैं, अनन्य योगेना, अनन्य योग से के द्वारा ही, योग मतलब भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा अर्थात ज्ञान कर्मादि से मुक्त भक्ति के द्वारा माम ध्यायंत उपासते, केवल ध्यायंत नहीं बोल रहे हैं कि बैठ के बस खाली ध्यान कर रहा है, उपासते मतलब विभिन्न क्रियाओं के द्वारा भगवान को पूजा करता है, ये पहले शब्द से क्लियर हो गया। उनके लिए भगवान क्या कह रहे हैं, तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। क्या अर्थ समझ रहे हैं, अर्थ समझ रहे हैं इसका, अर्थ बहुत सिंपल है, उनके लिए मैं उनका उद्धार करता हूं मृत्यु संसार से। ये फैसिलिटी, ये हेल्प ब्रह्मवादियों के लिए बोला था भगवान ने, नहीं बोला ना, जो ब्रह्म में आ सकते हैं वो कई जन्मों के बाद मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन यहां भगवान क्या बोल रहे हैं, जिनकी चेतना मुझ में आविष्ट है, मुझ में आसक्त है, उनको मैं स्वयं उद्धार करता हूं। तो आप दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं, ब्रह्मवादियों की साधना में और उनकी सुविधा में, और भक्तों की साधना में और उनकी सुविधा में आपने क्या अंतर सीखा बताइए। Okay, use the mic, if you know the answer. ब्रह्मवादियों की साधना कहाँ है, क्या करते हैं और उनको क्या सुविधा प्राप्त है?
वो निराकार की उपासना करते हैं,
yes.
और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके वहाँ पे पहुँच पाएंगे।
हाँ, और सुविधा क्या प्राप्त है उन्हें? सुविधा ये है कि भगवान की पूजा नहीं करनी सही में हमारे एक रिश्तेदार है, वो कहते हैं पहले मैं भक्ति करती थी तो एकादशी पालन करो, ये करो, वो करो, अब जब से निरंकारी हो गई हो तो कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये सुविधा हो गई, लेकिन वस्तुतः ये फ्रॉड निरंकार है, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था सारे जीवात्माओं को सर्वभूत हिते रथा, सभी जीवात्माओं के हित के लिए कार्य करना, ऐसे बहुत सारे उनकी भी साधना है, लेकिन बस भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान को स्वीकार नहीं करते। सबको भगवान रूप में समझना या भगवान की अभिव्यक्ति मानना, लेकिन भगवान को नहीं मानते, बस ये बात है। उनकी आसक्ति जो है वो ब्रह्म में है, ठीक है। और भक्तों की साधना और सुविधा क्या है?
भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं,
करते हैं, लेकिन इस श्लोक के अनुसार क्या क्या करते हैं वो लोग? सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, और ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या सुविधा दे रहे हैं? भगवान स्वयं लेके जाएंगे, यानी भक्त को क्या करना है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मर्जर न्याय और मर्कट न्याय दोनों का वर्णन है। मरकट न्याय मतलब बंदरी के बच्चे का न्याय, बंदरी का बच्चा, बंदरी समझते, बंदरिया सॉरी, बंदरिया का बच्चा उसको बंदरिया को पकड़ता है। तो वहां कौन सा न्याय इस श्लोक में दिख रहा है आपको? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगिना माम ध्यायन्त उपस्थिति। भक्त काम है भगवान के चरणों को कैसे पकड़ता है, भगवान की सेवा करता है, सारे कर्मों को समर्पित करता है, ये सब कुछ बंदरिया वाले न्याय के अनुसार है। समझ रहे हैं न्याय? बंदरिया का बच्चा बंदरिया को कस के पकड़ा हुआ है, तो कस के पकड़ने वाला श्लोक कौन सा है? छठे नंबर का। लेकिन मर्जर न्याय क्या है? बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है, और वो भगवान बता रहे हैं दूसरे वाले में, तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, उनका उद्धार करने वाला मैं हूं। तो भक्तों को यह सोचना नहीं चाहिए कि हमारा उद्धार कैसे होगा, वो भगवान सोचते हैं। भक्तों को यह सोचना चाहिए कि कैसे हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। समझ गए? बाकी काम अपने आप करेंगे, और वो अपना काम हमसे अधिक ज्यादा जानते हैं। कैसे उद्धार करना है, क्या उद्धार करना है, वो जानते हैं, ठीक है। और हर भक्त का अलग अलग प्रकार से भी करते हैं। जैसे क्या नाम है, गजेंद्र को खुद लेने के लिए आए, अजामिल के लिए विष्णु दूतों को भेज दिया, सबका उद्धार अलग अलग तरह से होता है। ध्रुव महाराज के लिए विमान भेज दिया, तो हर व्यक्ति का अलग अलग प्रकार से करते, वो जानते हैं कैसे उद्धार करेंगे। भवामी न चिरात पार्था, कोई व्यक्ति कहेगा कि क्या बहुत समय लगेगा, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? न चिरात, चिर समझते हैं, चिरकाल समझते हैं आप, चिरकाल का मतलब होता है बहुत लंबा काल। तो भगवान कह रहे हैं भवामी न चिरात पार्था, हे अर्जुन बहुत समय नहीं लगाऊंगा मैं उद्धार करने की। वैसे कभी कभी भक्तों को लगता जरूर है कि अरे भाई 5 साल हो गया कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ है, 20 साल हो गया कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन ये 20 साल, 50 साल, 5000 साल, 50000 साल भी क्या है अनंत समय में? कुछ है? 50000 साल को भी हम अनादि काल से यहां फंसे हुए हैं, अगर डिवाइड किया जाए तो क्या है? कुछ भी नहीं। खैर, भगवान बोल रहे हैं भवामी न चिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम। तो ये अंतर देखा हमने, क्या था वो उस वाले में, अव्यक्तासक्त चेतसाम और मैया वेशित चेतसाम। आप लोगों को लग रहा होगा मैं तैयारी करके आया हूं, लेकिन ये चीज मैंने कभी नोटिस नहीं करी थी। ये दो लोगों का, दो शब्दों का कंपैरिजन मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, और ये न्याय इस पे अप्लाइकेबल होता है इन श्लोकों पर, ये भी मैंने कभी सोचा नहीं था। हमेशा भगवान जब क्लास दीजिए तो कुछ ना कुछ हमेशा भगवान सिखाते हैं, ये मैं नहीं दे रहा हूँ क्लास आपस में, मान के चलिए जस्ट, ये कभी मैंने इस तरह से इन श्लोकों को देखा ही नहीं था इस तरह से, इसलिए मैं क्लास देता हूँ ताकि मेरे को भी कुछ कुछ न्याय सीखने को मिले। इट्स लाइक कृष्णा इज टीचिंग ऑल ऑफ अस, हम भक्तों को सिखा रहे हैं कुछ, बस संघ में आने से भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, संघ में आके चर्चा करते हैं। आप पढ़िएगा अनुवाद प्रभुपाद जी का।
अनुवाद, जो अपने सारे कार्यों को मुझमें अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ।
थोड़ा इस श्लोक को समझ लेना चाहिए। सुमधुर प्रभु, आप सुबह ये मार्केटिंग करने के जाते हैं, आप तो ब्रह्मचारी हैं, ये सब पैसे वैसे क्यों चक्कर में क्यों फंसते हो? समझ में आ गया? क्योंकि भगवान की सेवा है, वैष्णव की सेवा है। तो आपको लगेगा जब ये सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं सब्जी खरीदने? जगन्नाथ के भोग के लिए है। तो आप कहेंगे भाई हम कर्म करते हुए कृष्ण को कैसे स्मरण करें, क्योंकि आप कर्म किसके लिए कर रहे हैं? ये देखिए एक सिंपल सी बात सोचिए, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति कितनी तपस्या करता है, तपस्या के अलावा कुछ नहीं करता है कि नहीं? क्यों प्रभु जी, है कि नहीं? लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं, कहने हर जगह उद्देश्य ही होता है ना, अरे भाई मैं नौकरी नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। तो भले ही वो कार्य कर रहा है लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, स्मरण किन का हो रहा है, पत्नी का, बच्चों का, होता है कि नहीं होता? तो आपको लगेगा वो व्यक्ति बड़ी मेहनत से कार्य कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? अगर उसकी शादी नहीं होती तो उतना मेहनत नहीं कर रहा होता, निश्चित नहीं कर रहा होता। तो आप देख सकते हो जैसे संबंध का अनुभव होने के कारण कर्म कर रहा है, किसका स्मरण कर रहा है, लेकिन पत्नी का, बच्चे का नहीं होता। माताएं देखो कुछ स्पेशल सब्जी मान लीजिए बच्चे को पसंद है तो भले ही वो बैगन खरीद रही हैं लेकिन उनको पता है कि मेरे बच्चे को बैगन आलू टमाटर अच्छा लगता है, वो लेके आते हैं, होता है कि नहीं? माता जी लोग करते हैं कि नहीं? या मेरे पति को ही अच्छा लगता है। तो क्रिया आप बाहर रूप से देख रहे हो लेकिन आंतरिक रूप से क्या चल रहा है, संबंध होने के कारण, प्रेम होने के कारण उस क्रिया के संग एक स्मृति भी जुड़ी हुई है। मेरी बात आप समझ गए? तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सारे कर्मों को समर्पित करते हुए अपने चित्त को स्थिर कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस अब एक जगह बैठे हुए हैं और कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। ये भी है, कुछ बहुत उच्चतर भक्त होते हैं उनकी ये भी स्थिति भी होती है, लेकिन यहां भगवान बता रहे हैं सारे कर्मों को समर्पित करते हुए अपने चित्त को भगवान में स्थिर करते हैं। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं प्रैक्टिकल समाधि। हमारे प्रभु जी यहां पे हैं, आप प्रचार करने के लिए 6 घंटा तैयारी क्यों करते हैं? कोई आपको धन तो प्राप्त होगा नहीं, क्यों करते हैं? क्या उद्देश्य? एटलीस्ट अच्छा वाला उद्देश्य बता देना। कोई और उद्देश्य हृदय में तो पता नहीं, लेकिन अच्छा वाला बताइए जो होना चाहिए। क्या उद्देश्य?
भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सके,
अच्छे से हो सके, कुछ जो बद्ध आत्माएं हैं उनको समझ, भगवान का ज्ञान दे सके और वो उसको समझा सके। तो आप बाहर के लोग भी और सब कुछ एग्जाम की तैयारी करते 6-7 घंटे, लेकिन भक्त मान लो 3-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तैयारी कर रहा है। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक एक लेक्चर के लिए 5-5, 6-6 घंटे तैयारी करते थे महाराज, टीका पढ़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो उद्देश्य क्या है? उन क्रियाओं को करते भी उद्देश्य क्या है? कृष्ण से प्रसन्न होंगे। और आप देखेंगे कि बहुत बड़ी सुविधा है। क्यों? क्योंकि कार्य करना बंद नहीं करना आपको, जो आपको अच्छा लगता है कार्य करना, बस खाली कृष्ण को समर्पित कर देना। ये सब, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे के श्लोकों में जैसे हम करते जाएंगे ये बातें बार बार आएंगी कि मन आपका कहीं उधर उधर मतलब हो भी रहा है, लेकिन अगर आपका क्रियाएं लगी हुई हैं तो भी आप भगवान के धाम चले जाओ। इसलिए भगवान की प्रैक्टिकल सेवा करना भी आपकी मुक्ति का कारण हो जाता है। भगवान किसी भी सेवा को कम नहीं मानते। आगे पढ़िए,
तात्पर्य
एक चीज आप समझ गए ना, अपनी क्रियाओं को समर्पित करना है, अपने चित्त को भगवान को में लगाना है, और भगवान देखेंगे कि आपकी मुक्ति कब होगी, वो आपका हेडेक नहीं है। मेक सेंस टू यू? वो कुछ नहीं सोचना कि कब भगवान के धाम जाओगे, अपना कर्तव्य करते रहो। भगवान अपना कर्तव्य करने में कभी नहीं चूकते। हमें लगता है कि हमारा सुन नहीं रहे, हमारा देख नहीं रहे, वो देखते हैं, वो देख रहे हैं अभी भी। ठीक है,
तात्पर्य यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्त जन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शुद्ध भक्ति करने पर व्यक्ति को अनुभूति होने लगती है कि मैं कृष्ण पे आश्रित हूं। अब देखिए, भौतिक जगत में हम लोग कई बार उदाहरण को दिए हैं, हम लोग कोई वस्तु नहीं लेके आते, और अपने शरीर के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते कि शरीर कैसे निर्वाह हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन कोई करने वाला है और वो भगवान कृष्ण है करने वाले, इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, और उनके पीछे उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य है उसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। कोई व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता, तो ये एक भक्ति करने से व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि किस प्रकार से कृष्ण पे मैं हर क्षण निर्भर हूं और मेरा एकमात्र कर्तव्य है उनको उनकी सेवा करना। आगे पढ़िए,
उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी।
ये किसको समझ में आया? सुमधुर बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। यस,
जीव का स्वभाव सेवा करना,
वेरी गुड।
माया के सेवा करेगा नहीं तो भगवान के सेवा करेगा।
बस दो ही स्वामी हैं, या तो माया है या कृष्ण है। आप कहें प्रभु जी मैं कोई सेवा नहीं कर रहा, क्या ये सही है? आप ये नहीं कह सकते कि हम कोई सेवा नहीं कर रहे। या तो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो माया की सेवा कर ही रहे हैं, मन से शरीर से। इसलिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सेवा ना करें। अब चॉइस ये है कि हम किसकी सेवा करें। कल ही मैं क्लास में बता रहा था कि अपने जीवन में हमें चिन्मयता बढ़ानी चाहिए। तो बाद में भक्त बोले कि प्रभु जी चिन्मय तो हम हैं, जीव तो चिन्मय है। हाँ, लेकिन जीव चिन्मय है, लेकिन चिन्मय शक्ति का संपर्क कितना कर रहा है। जैसे अभी हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवद गीता पढ़ना चिन्मय शक्ति का संपर्क है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण जप करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान की भक्ति करना, ये हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आते हैं, तो स्पष्ट है। लेकिन अब इसका कोशंट कितना है, कितना प्रपोर्शन है? 50% आप भगवान की सेवा में लगे हो, 20% लगे हो, 10% लगे हो, 90% लगे हो, उसके अनुसार हमारी हमें अनुभव होगा कि हमारी प्रगति कितनी हो रही। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यही बात है कि सेवा करना हम छोड़ नहीं सकते हैं, अब हमें देखना है कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या माया की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आगे पढ़िएगा।
जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णता एकाग्र करे, वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी।
बात है कि जहां मन जाएगा वहां इंद्रियां भी जाती हैं, ये बात आप समझ रहे हैं? वो अलग बात है कि हम जब जब करते हैं तो मन उधर उधर जाता है, हम जाने मतलब अपनी इंद्रियों को नहीं जाने देते, लेकिन जहां आपका मन जाएगा प्राय वही हम जाने लगते।
आज सुबह जैसे मोबाइल वाला,
क्या चीज मोबाइल वाला?
मोबाइल आप देख रहे थे, बोल रहा था
आपने। हाँ वो तो अलग, वो तो खैर अलग ही चीज, तो अलग बात है कि मन आपका कहीं अब्सॉर्ब है तो आपकी इंद्रियां कुछ अंदर से काम ही नहीं करती। प्रभु जी जोर जोर से बोल रहे थे मोबाइल में, मैं कुछ टाइप कर रहा था, मैंने कुछ भी सुना नहीं। मेरे बगल में बैठे ये अमृत दे रहे थे कान में, लेकिन मुझे कुछ भी जो है सुनाई नहीं पड़ा, मैंने कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने कहा, मैंने बंद किया, मैंने कहा फिर से आप बोलिए। मन का इतना शक्ति है, अद्भुत शक्ति। खैर, लेकिन बात यह है कि अगर मन हमारा भगवान में आसक्त है तो हमारी इंद्रियां चाहेंगी भगवान की सेवा करना, हम करना चाहेंगे कुछ कृष्ण के लिए कर्म। यस,
चाहे वह जो भी कर्म करे लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए।
ये क्या अर्थ है इस लाइन का? बहुत अच्छी लाइन है शिवम, क्या अर्थ है इसका? क्या हम मुर्गा काट सकते हैं कृष्ण के लिए? ये अर्थ है कोई भी कर्म करे,
मतलब हमें भगवान की सेवा ही करनी चाहिए बस।
ओके, सुमधुर प्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझ लेना चाहिए। चाहे वह जो भी कर्म करे लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। यस,
भगवान का कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, हम भाव में करते हैं ये।
वेरी नाइस, दिस इज द पॉइंट। यानी कि कोई व्यक्ति ठाकुर जी के लिए बर्तन माँज रहा है, कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है, कोई व्यक्ति सब्जी लेने के लिए जा रहा है, कोई व्यक्ति मैनेजमेंट कर रहा है, या और कोई भी सेवा कर रहा है, भगवान केवल ये देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरी सेवा में लगा हुआ है। हम लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा साइज आप जानते हो ना, बाल के आगे के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है। प्रभुपाद जी का एक कोटेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति क्या सेवा कर रहा है, मेन बात है भगवान ये देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरी सेवा में लगा हुआ है। और जितनी बात हमको ये अनुभूति होगी, हम किसी भक्त से द्वेष नहीं करेंगे कि वो क्या सेवा कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं ये सोचूंगा कि ये सेवा अधिक महत्वपूर्ण है, वो सेवा अधिक महत्वपूर्ण है, तो मैं समझूंगा वो अधिक महत्वपूर्ण है, फिर मैं उसे द्वेष करूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मैं कृष्ण को प्रेम कर रहा हूं कि नहीं। मैं जो भी सेवा कर रहा हूं वो प्रेम वश कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं या गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं कि नहीं। हम तो अपने आप प्रसन्न हो ही जाएंगे अगर ये भाव रहेगा कि गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो, तो इसी के द्वारा सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होगी। जितना मैं सोचूंगा कि मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा, उतना प्रसन्नता नहीं आएगी। माइक दे दीजिए। कोई
पता नहीं, ये वैसे तो गलत से लगता है, मतलब कई बार कहते तो प्रदर्शन के लिए होता है वो, मान लो मैं सेवा कर रहा हूँ, बुहारी लगा रहा हूँ यहाँ पर, और आप यहाँ के इंचार्ज हैं, तो मेरे मन में एक ऐसी वो रहेगी कि जैसे आपकी निगाह में आ जाऊँ मैं।
देखिए
ये क्या भाव है,
ये शुरुआत में जरूरी है, शुरुआत में भक्तों को इस प्रकार का प्रोत्साहन मिलना जरूरी होता है, और इतनी आसानी से जाता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कुकिंग करता है तो पूछता जो है, नमक ठीक है क्या? अब कहने का अर्थ है वो जानना चाहता है कि कैसा बना, और हमें सराहना करनी भी चाहिए, आवश्यक है। ये कोई एटलीस्ट बहुत अपनी कॉलर ऊंचा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, देखो मुझसे बड़े को झाड़ू नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी सीनियर भक्तों को हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हो, कृष्ण की सेवा कर रहे हो, क्योंकि कृष्ण की सेवा करने का संकल्प किसी जीव के जन्म में कितने जन्मों के बाद आता है, तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। और ये इच्छा जाती नहीं है, इतना बड़ा हानि नहीं है। अच्छा। अगर हम दुनिया को दिखाने के लिए ना कर रहे हैं, केवल अपने गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, और अगर मन में इच्छा थोड़ी बहुत है भी कि वो देखें, तो इतना कोई इतना हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर ये है कि दुनिया देखे तो बहुत हानिकारक, थोड़ा डेंजरस। दुनिया को दिखाने के लिए करेंगे क्योंकि दुनिया हमेशा बाह्य से रूप से देखती है, तो फिर हम बाह्य भक्त बन जाएंगे कि दुनिया को क्या पसंद है उसके अनुसार मुझे करना चाहिए। आप कई बार ऐसा होता है लोग कि मतलब सेवा करते हैं तो उसे इसीलिए कि मेरी फोटो आ रही है कि नहीं है, लेकिन अगर वो नाम जप करता रहेगा, श्रवण करता रहेगा, उसके बाद उसको ये सब फीका लगने लगेगा, इससे कुछ हमारे को फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है कि कृष्ण संतुष्ट हो जाए। इस संबंध में शबरी का उदाहरण अच्छे से याद आ रहा है कि शबरी को उनके गुरुजी ने बोला था कि आप रोज अपने आश्रम को बुहारो, कभी भी राम आ सकते हैं। तो कई साल बीत गए थे और वो रोज रोज कृष्ण के लिए, भगवान राम के लिए ऐसा व्यवस्था करती थी और रोज भगवान नहीं आते थे। अंततो गत्वा आए भगवान, तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में है और वो देख रहे हैं कि हम क्या सेवा कर रहे हैं और किस भावना में कर रहे हैं, तो वो प्रसन्न होकर के हमारी प्रगति स्वयं करते हैं। ठीक है, मैया, हमें देखना चाहिए मैया वेशित चेतसान, हमें भगवान में आसक्त होना चाहिए। इसलिए इसमें श्रवण कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर श्रवण कीर्तन नहीं होएगा तो हम इसी प्रकार की भावनाओं से ग्रसित रहेंगे, लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हमारे गुरु महाराज इस बारे में बोल रहे थे कि बाहर के लोग आपको आउटसाइड इन देखते हैं, मतलब बाहर से आप कैसे चमक धमक रहे हो उसके अनुसार सोचते हैं तो बहुत अच्छा भक्त है, और भगवान आपको इनसाइड आउट देखते हैं कि अंदर से कैसे। और उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान दोष देखते हैं, लेकिन भगवान ही जानते हैं, भगवान जानते हैं कि हमारी भक्ति का स्तर कितना बड़ा है। तो धीरे धीरे बाह्य से आंतरिक भक्त हमें बनना है। हाँ, माइक पे बोलिएगा।
इसमें जैसे कर्म लिखा है, चाहे वो जो भी कर्म करे, तो कर्म का मतलब यहाँ पे नॉर्मल मटेरियल
कर्म का मतलब है, वो उस तरह से नहीं लेना चाहिए जैसे हम सोचते हैं कर्म कर्त है, मतलब वेदों में वर्णित क्रियाएं। यहाँ कर्म का मतलब एक्शन, कोई भी क्रिया कर रहा है कृष्णार्थम अखिल चेष्टा, भगवान कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना, उस अर्थ में लिखा जा रहा है। कर्म का मतलब यहाँ पे है भक्ति कर्म, कृष्ण कर्म।
यहाँ पे तो प्रभुपाद
सेवा बोलिए, कर्म बोलिए, सेवा में क्या हाथ पैर से कुछ कार्य नहीं करते आप? तो कर्म का रूढ़िवादी अर्थ मत लीजिएगा कि वो जो वेदों में वर्णित कर्म है अपनी कर्मकांड वाला कर्म। भक्ति में ज्ञान और कर्म के अलावा कुछ है ही नहीं। भगवत ज्ञान है कि नहीं और भगवत सेवा है कि नहीं, लेकिन उन कर्म और ज्ञान से बचना है जो हमारी भक्ति को आवृत करते हैं। अब मंगल आरती जाते हैं तो कर्म हुआ कि नहीं हुआ?
ये तो कर्म नहीं है।
अरे भाई, एक शब्द का रूढ़िवादी अर्थ होता है, मतलब एक फिक्स्ड अर्थ है, उसके अलावा भी तो अनेक अर्थ होते हैं। कर्म का रूढ़ी वहां, कर्म का एक रूढ़ीवादी अर्थ हो गया, ट्रेडिशनल अर्थ हो गया कि जो वेदों में वर्णित सकाम कर्म है वो, लेकिन कर्म का ये भी अर्थ होता है कि स्नान करना, स्नान करना कर्म है कि नहीं? क्रिया, हाँ, सांस लेना क्रिया है कि नहीं? वेदों में लिखा है कि सांस लो, आप वेद सुन करके सांस लेते हैं समझ गए? तो वेदों में लिखा है कि आप अग्निहोत्र यज्ञ कीजिए, वो कर्म एक अलग कंटेक्स्ट में है, कर्मकांड। भक्ति में भी कर्म है, वो कृष्ण कर्म कहलाते, उसको आप अकर्म भी कह सकते हैं। कर्म फल नहीं है, लेकिन कर्म तो है, क्रिया तो है, एक्शन तो है, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, तो मेन बात ये जो सुमधुर प्रभु ने समझाया, यही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको भगवान ने जो शक्ति दी है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। कॉम्पिटिशन की कोई आवश्यकता नहीं, किसी से कॉम्पिटिशन कर नहीं रहे हैं हम, खाली अपने आप को बेहतर भगवान का भक्त, भगवान का सेवक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति का यही आदर्श है। ओके,
भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सुक कर सकता है, और जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था।
उत्सर्ग का मतलब त्याग सकता है। ठीक है, जैसे कि अर्जुन की आसक्ति थी कि मैं गुरु को कैसे मारूंगा, मैं अपने सुजनों से कैसे युद्ध करूंगा, उनका वध करूंगा, तो जब समझ गए कि कृष्ण का प्रसन्नता इसमें है, कृष्ण चाहते हैं ऐसा हो, तो फिर उन्होंने किया। यस, ये आपको बात बहुत सिंपल लग रही है लेकिन अपने जीवन में भी अप्लाई करना पड़ेगा। आज ही मैं एक भक्त को बोल रहा था कि भाई, उन कह रहे थे कि मैं अगर भक्तों के संग जप करने जाऊंगा तो मेरे माता पिता दुखी हो जाएंगे। अरे, मैंने कहा आप कल मर जाओगे तो आपके माता पिता क्या करेंगे? दुखी हो या नहीं हो, आप सही कार्य कर रहे हो, कृष्ण से प्रसन्न होंगे, गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे, ये जीवन का ध्येय को लगाना चाहिए। जितना हम इस बात को लगाएंगे अपने जीवन में उतना सुखी हो जाएंगे, क्योंकि देखिए सत्य तो ये है कि ना तो हमारा कोई माता है ना कोई पिता है। इसका अर्थ ही नहीं कि हम लोग रूखे हो जाएं, लेकिन सत्य तो है ये बात, है कि नहीं? आपके पिता हैं, हाँ, इस जन्म में है, और पिछले जन्म में कौन थे और उसके वाले में? उनका अब याद भी नहीं है एकदम, किसी को याद है? जीरो एकदम याद नहीं है, तब हर जन्म में उन लोगों को इतनी महत्व दे रहे हैं जिनको अगले जन्म में आप बिल्कुल भूल जाओगे। आप सोचा है कभी इस तरह से कि भाई मेरे माता सब बोल रहे हैं, पिता सब बोल रहे हैं, माता सब बोल रही, पिता बोल रहे हैं, अरे कृष्ण क्या बोल रहे हैं, जो माता धाता पितामह है वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी शरण में आओ। कितने जन्म हम ऐसे और जगह उनके चक्कर में फंस चुके हैं। तो व्यक्ति को भगवान, इसका अर्थ ही नहीं कि उनकी हम सेवा नहीं करें, प्रेम नहीं करें, आदर नहीं करें, लेकिन भक्ति को नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए इस बारे में। तो इसमें लिखा है उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना। यस,
यह विधि अत्यंत सरल है।
सरल है क्या? वाकई सरल है।
मनुष्य अपने कार्य में लगा
सरल है अगर हमारा चित्त भगवान में आकृष्ट है, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाती। यस,
मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे।
यानी कि हरि नाम करने से भगवान में आसक्ति उत्पन्न होती है। मैयावेशित चेतसाम, चेतना भगवान की तरफ उन्मुख होती है, और जब भगवान की तरफ चेतना उन्मुख होने लग जाती है तो भगवान अपने आप ही ऐसे भक्त का उद्धार कर देते हैं। अपितु शास्त्र में वर्णन है कि कोई एक बार भी नामोच्चारण करता है तो भगवान कहते हैं एतद विषयामति, ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। केवल एक बार बोलने से, बस हम वैष्णव का अपराध ना करें, वैष्णव अपराध और सातवां नाम अपराध ये ना करें, नाम के बल पे पाप ना करें और वैष्णव का अपराध ना करें। अगर इतना भी ना करें, मतलब से बच जाएं तो प्रगति बहुत तेज हो जाती, प्रयास करना चाहिए। यस,
मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर, यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं।
ओके, जो योगी जन हैं वो लोग अपने परफेक्शन, अपनी सिद्धि के अनुसार दूसरे ग्रह की प्राप्ति करेंगे। अगर वो सिद्ध नहीं हुए तो भगवत धाम नहीं जा सकेंगे। ये क्लियर है? इस चीज को आप आठवें अध्याय में पढ़ सकते हो कि अलग अलग समय में योगी जब शरीर त्यागता है तो उसको अलग अलग गंतव्य प्राप्त होता है। दूसरा चीज हम यहां देख रहे हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति, इसका कह रहे हैं, इस अवसर का विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। अर्थात जो लोग भौतिकतावादी हैं वो या तो स्वर्ग जाएंगे या इसी जगत में दोबारा जन्म लेते हैं। ये मृत्यु के समय की बात कर रहे हैं, और यहां बोल रहे हैं कि भगवान स्वयं उन भक्तों को जो अपने सारे कर्मों को कृष्ण को समर्पित करते हैं स्वयं उन्हें वैकुंठ लेके जाएंगे। तो सबसे सिक्योर फ्लाइट कौन सी है? एक तरीका तो ये है, उदाहरण मन में आ रहा है कि हवाई जहाज आप खुद चलाना सीखें और खुद उड़ाएं। समझ रहे? तो उसमें तो बड़ा मुश्किल है भाई, सीखो। और योगी लोग ऐसा ही खुद सीख रहे हैं कहाँ पे अपना हवाई जहाज लेके जाना है। और दूसरा है कि आपका पायलट बड़ा एक्सपर्ट है, परफेक्ट है, वो अपने आप ही लेके जाएगा, आप खाली बैठ जाओ। तो यानी भक्ति की फ्लाइट जो है ये भगवान ही चलाते हैं, और भगवान की कृपा से ही हम लोग भगवान के धाम चले जाएंगे। तो बच्चा जिस प्रकार से माँ पे आश्रित रहता है, जैसे आपने देखा होगा भारत में तो खूब देखा होगा, माताएं अपने बच्चे को लेकर के मोटरसाइकिल पर बैठती हैं और बच्चा प्रैक्टिकली हवा में झूल रहा होता है। क्या अगर आपको अब आपकी माता जैसे पकड़ेंगी तो आप बैठेंगे ऐसे? आप विजुलाइज कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पिताजी बाइक चला रहे हैं और माता जी अपने बच्चे को ऐसे टांगी हुई है हाथ पे, और बच्चा बिल्कुल हवा में झूल रहा है, वो आराम से सो रहा है, मजे कर रहा है, बिल्कुल हंस रहा है, खेल रहा है, और गाड़ी चल रही है, क्योंकि उसको अपनी माता पे सहज विश्वास। कोई नहीं सोचता अरे मुझे गिरा दिया तो क्या होगा, अब क्या करेंगी, मेरे ध्यान रखेंगी कि नहीं करेंगी। इस प्रकार से भक्ति करने से भगवान में सहज श्रद्धा होने लगती है। जब भगवान इतने सारे भक्तों का ध्यान रख रहे हैं तो मैं जीवन भर भगवान की सेवा कर रहा हूं तो भगवान क्यों नहीं ध्यान रखेंगे? और अभी भी ध्यान रख ही रहे, ठीक है। यस,
भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती।
क्लियर है कि नहीं? आपको बहुत अनुभवी होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? बस भगवान का स्मरण करना है, अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना। यस,
वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामी परम स्थानम अर्चिर आदि गतिम बिना गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्यतः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है, इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं।
और भगवान के लिए बहुत बड़ा भार है कि कभी कभी लोग सोचते हैं प्रभु जी मैं तो इतना पतित हूँ कि कृष्ण भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते तो कैसे कैसी बातें लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान के लिए आप लोगों को पता होगा कि वसुदेव दत्त ने जब प्रार्थना करी कि भगवान सभी का उद्धार कर दीजिए और उनके बदले में पाप मैं भोग लूंगा, तो महाप्रभु कहते हैं कृष्ण के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं उद्धार करना, एक पूरा ब्रह्मांड एक मस्टर्ड सीड की तरह, सरसों के दाने की तरह, अभी एक आपके पास पूरा जैसे आप छौंक मार रहे थे उस दिन है ना खिचड़ी में, तो मस्टर्ड सीड डाल रहे थे ना, उसमें से एक मस्टर्ड सीड गिर गया तो आपने ध्यान दिया या काउंट करके डालते हो कितने छौंक में मारूं मैं, नहीं मारते ना। तो आप एक मुट्ठी में अगर बहुत सारे सरसों के दाने उसमें से एक सरसों का दाना गिर गया तो क्या हमें कोई नुकसान होता है? नहीं। तो उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के जीवों को भी आप मुक्त कर दिया भगवान ने, तो भगवान के लिए कोई नुकसान था ना, भगवान तो चाहते ही हैं। उदाहरण दिया जाता है एक और उसमें चैतन्य चरितामृत में, किसी के पास बहुत सारी काम धोने गाय हो और एक बकरी खो जाए उसकी, तो कहेगा अरे बाप रे मेरी बकरी खो गई। हजारों का असंख्य कामधेनु गाय हो किसी के पास और एक बकरी खो जाए तो क्या फर्क पड़ता? तो पूरा भौतिक जगत भी अगर खत्म हो जाए तो कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात है कि भगवान के लिए कोई भी मुश्किल नहीं, हमारी बस खाली यही प्रयास है कि हर कर्म कृष्ण के लिए होना चाहिए। यस,
वे यहां पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता है जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रह व स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता।
ये तो हमने पिछली बार भी चर्चा किया था कि भाई आप जब समुद्र को देखते हो तो सोचते हो क्या कि हम तैर के पार करेंगे? इस जगत में भी नहीं करते, तो इस जगत के समुद्र को हम तैर के पार करने के बारे में नहीं सोचते हैं तो भव सागर को कैसे पार सकते हैं? ठीक है, तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान के चरण कमल रूपी नाव का ही आश्रय लेना चाहिए।
इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से
हो चुका, पढ़ लिया आपने, किंतु यदि कोई
आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं।
वस्तुतः जब आप किसी को कृष्ण भावना दे रहे हैं तो आप उसको भव सागर से बाहर निकाल रहे, इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। इसलिए लोगों को सीखना चाहिए वैष्णव सिद्धांत, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ी सेवा है। सारी सेवाएं हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन लोगों को भगवत ज्ञान देना ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि व्यक्ति को खुद भी सीखना होता है कि उसकी इंद्रियां कैसे नियमित हों कृष्ण की सेवा में, कैसे करे कृष्ण की सेवा कैसे करे। जैसे मान लीजिए आपने एक बार प्रसादम खिला दिया, लेकिन अगर आपने सिखा दिया कि भोग कैसे लगाओ तो रोज प्रसादम खाएगा कि नहीं खाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए प्रसाद का महत्व बताना आवश्यक है, कैसे भोग लगाते हैं उसे सिखाना आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है। प्रचार मतलब उसकी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कैसे वो हर कर्म को कृष्ण को समर्पित करे। अगर आप ऐसे किसी को बोल देंगे या कोई रिकॉर्डिंग सुन लेगा कृष्ण को कर्म समर्पित करे तो कहेगा कृष्ण है कहाँ जा समर्पित करूँ। लोग प्रश्न करते हैं मेरे को, प्रभु जी आपने बोला कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना भक्ति है, तो कहाँ है भगवान जो मैं लगाऊं? तो ये इसकी आवश्यकता है, किस प्रकार से विग्रह के रूप में है, सारा कुछ ट्रेनिंग देने की जरूरी है, तब समझ आता है अच्छा अच्छा मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। बहुत समय लगता है लोगों को, तो इसलिए हर भक्त का कर्तव्य है कि कम से कम एक व्यक्ति को तो नाव में लेके आए, एक व्यक्ति को, अकेले अकेले नाव में नहीं बैठना चाहिए, एक व्यक्ति को तो कम से कम लाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और हमें कुछ नहीं करना है, जो आचार्यों की रस्सी है वही हमें हैंड ओवर कर देनी है। आचार्यों ने जो हम बताया है ज्ञान, रूपा जी समझा रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र जप करो, भगवान के लिए सेवा करो, भगवान की सेवा करो, अपने आप व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये एक बार बोलने से नहीं आता, बार बार उस व्यक्ति को समझाएंगे तब जाकर समझ में आता है उसको। यस, फॉलोअप करना पड़ता है। आगे पढ़िए।
मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने।
इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि अन्य ज्ञान कर्म में फंसने की जरूरत नहीं है। कर्म कांड करे, ज्ञान कांड करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, जैसे मान लीजिए, मैं वही उदाहरण दूंगा, हवाई जहाज में आप बैठे हो और ऐसा लगता है कि हवाई जहाज बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या बस में बैठ जाएंगे आप? कहेंगे हाँ बस लग रहा है तेज चलती है, बस में लगता है बस तेज चलती है, तो क्या बस में जाएंगे? समझिए, अगर आपको लग रहा है कि हवाई जहाज धीरे चल रहा है, चल नहीं रहा है धीरे, आपको लग रहा है हवाई जहाज धीरे चल रहा है, तो आप खिड़की खोल के नीचे जो बस जा रही है उसमें बैठेंगे? नहीं ना बैठेंगे। तो इसलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है। क्या ये श्लोक प्रेरणादायक नहीं लगता आपको? क्या आपको लगता नहीं है इसको कि हाँ, देख करके हम ये जो भी मैं कृष्ण के लिए कर्म करने का मुझे मौका मिल रहा है, भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। यही मुझे एकदम सीधे स्पष्ट, चाहे कोई भी कार्य हो, अगर टॉयलेट बाथरूम भी साफ कर रहा है वो मंदिर में या कहीं भी सेवा कर रहा है भगवान की, वो भगवान को पसंद करता है। कितना सुंदर बात है, क्योंकि कर्म करने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आप किसी माता जी को बोल दीजिए कृपया आप सब्जी काटिए, तो क्या उनको काखा का जानना होता है? गांव में कौन सी माता जी को पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन सब्जी तो काट सकती हैं, फूल तो कोई भी चुन सकता है, भगवान के लिए फूल माला कोई भी बना सकता है। ये हमने 11.55 में चर्चा किया था, अगर आपको याद हो, तुलसी का पौधा कोई भी उगा सकता है, भगवान को समर्पित कर सकते हैं। यस,
नारायणी में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है,
या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः।
इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान को चाहिए है? मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, ना ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे।
क्या अर्थ है? अर्थात यह कर्म कांड और ज्ञान कांड में न फंसे। यस,
जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है, और जो अन्य योग विधियों
और मत लगाइए उसमें और नहीं है और है
जो अन्य योग विधियों चिंतन अनुष्ठानों यज्ञों दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं।
यज्ञ वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टं अतीयेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम अपेति चाद्यम। वेद अध्ययन करने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से जो भी पुण्य मिलता है एक योगी को प्राप्त हो जाता है, और साथ साथ वो भगवान का धाम भी प्राप्त करता है। आगे पढ़ लीजिए।
भक्ति का यही विशेष वरदान है,
अर्थात भक्ति कर रहे हैं तो मैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यस,
केवल कृष्ण के पवित्र नाम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है।
प्रभुपाद जी संबंध में बोलते हैं एक परपट में कि हमारे भक्त हरे कृष्ण मंत्र का जब पूरा नहीं कर पा रहे हैं और पूजा करने की बहुत कठिन कठिन विधियों को हमारे सामने लेके आ रहे हैं, भगवान के अर्चा विग्रह की बहुत कठिन कठिन विधियां, ऐसे भी कर सकते हैं क्या, ऐसे भी कर सकते हैं क्या, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं।
और कुछ वो भक्त जप नहीं कर पा रहे थे, कहने का भी है 16 माला जप कीजिए, जितना प्रभुपाद जी ने बताया है उसके अनुसार ठाकुर जी की सेवा कीजिए, बहुत क्या कहते हैं एक्स्ट्रा तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने मन से ही बोलने लग चालू कर देते हैं, हम एक ही बात खाएंगे या और अन्य तपस्या इकट्ठा कर लेते हैं, जो मुख्य तपस्या है हरे कृष्ण मंत्र जप करने की और दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र जप कीर्तन कराने की। चलो आप एक बार खा करके जप तो कर लो, लेकिन प्रचार की शक्ति रहेगी क्या? तो जितना भी आपका आवश्यक है प्रचार के लिए, सेवा के लिए, जो भी आवश्यक है वो तो करना चाहिए। हमें तुरंत हम रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास स्वामी नहीं बन सकते, इसलिए उनका अनुकरण करने के बजाय दूसरों में इससे प्राय अहंकार रहता है। देखो वो 3 टाइम खा रहे हैं, तो एक ही बात खा रहे हैं, और बाकी टाइम हम मिथ्या अहंकार खा रहे हैं, है कि नहीं? इस प्रकार से अहंकार नहीं आना चाहिए। जो भी तपस्या करें उससे हृदय सॉफ्ट और नम्र होना चाहिए। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद्गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि मां शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं।
ये थोड़ा समझ लेना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म के बहुत सारे नियमों का पालन भक्त ना भी कर पाए, लेकिन भक्ति की श्रवण कीर्तन आदि विधि का पालन कर लेता है उसे पार हुआ है। मान लीजिए कहते हैं उस्ताद नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, हरे कृष्ण मंत्र आप जब कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, उसी से सारे कुल का उद्धार हो। इंद्राद शुद्ध गुणयुक्ताद अरविंद नाभा पादारविंद मुखाद सुपच परिश वरिष्ठम मन्नीत गर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाद सकुलम भूयमान। कोई ब्राह्मण कुल में है और ब्राह्मण के गुणों से युक्त भी है, लेकिन अगर भगवान का भक्त नहीं है तो वो व्यक्ति अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त है और कुत्ता खाने वाले के भी पैदा हुआ है, लेकिन अपने मन वचन कर्म को कृष्ण में समर्पित कर रहा है, ये तो सर्वाणी कर्माणी इस श्लोक के अनुसार, तो न सिर्फ अपना उद्धार करेगा, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं पूरे कुल का उद्धार करेगा। तो ये भगवत धर्म की महिमा है, तो ये विश्वास होना चाहिए। तो व्यक्ति को कर्मकांड में नहीं फंसना चाहिए, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये कर रहे हैं, कृष्ण के लिए सेवा कीजिए बस वही सब।
अतः मनुष्य को व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।
समझ में आए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरी प्रगति कैसे होगी, कैसे होगी, भक्ति करने से होगी। सिंपल सी बात है ना, जैसे मैं खाना तो खा रहा हूँ तो शरीर में कैसी लगी है, अरे भाई खाओगे तो अपने आप ही सब हो जाएगा। ये चीज़ श्रीमद् भागवत में बताई गई, अगर आपकी जठरांगी स्ट्रांग है तो अपने आप खाना हजम हो जाता है। इसी प्रकार से भक्ति करने से मिथ्या अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि क्या हम नियमित रूप से भजन अपना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस चीज़ को देखते हैं, अपने आप भगवान की भक्ति के प्रभाव से हो जाता है।
प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है।
तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका हम देखेंगे, आपको तो पढ़ रहा हूँ आपकी भी तरह की। परंतु ज्ञान के बिना भी भक्त केवल भक्ति के द्वारा बड़ी आसानी से संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इस संबंध में मैं भगवत धर्म पे एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें प्रश्न उठाते हैं कि अरे भाई मान लीजिए रूम में अंधेरा है तो क्या अंधेरा किसी की पूजा करने से समाप्त हो जाएगा, लाइट जलाने से होगा ना। तो अगर जीव अपने आप को शरीर मान रहा है तो जीव को ज्ञान देना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना कि तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि बोलना चाहिए, तब उसे ज्ञान हो जाएगा। लेकिन सदाशिव स्वामी कोट करते हैं भगवान के जो शब्द है गीता में, त्रैगुण नहीं तैवी ऐसा गुण मई मनो माया दुर्त्य मामे वही प्रत्यंत्य माया मिला। ये जो अंधकार है ये जीव की सृष्टि नहीं है, ये अंधकार माया के द्वारा है और माया भगवान की शक्ति है। तो इसलिए जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो माया छोड़ेगी, चिल्लाने से कि मैं ब्रह्म हूँ अंधकार नाश नहीं होता। महाराज जो कर रहे थे ऐसे तो बोलेंगे हम ब्रह्मास्मि, लेकिन बाद में ब्रह्म को चाय चाहिए। और सही में देखा जाता है कि उनकी बुरी आदतें छूटती नहीं है, और हम देखते हैं कि एकदम यंग भक्त, सब लोग यंग ही तो हो, हरे कृष्ण मंत्र करने से कितने कठोर जीवन जी लेते हैं, अरे अब चाय भी नहीं पीते, वाह। आप लोगों को लगता है कि अब चाय नहीं पीते तो हानि हो रही, कुछ भी नहीं लगता। लोग जो मांस खाने वाले होते हैं मांस छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि मैथुन भी त्याग कर देते हैं, शादी भी नहीं करते बहुत से, तो क्यों हो पा रहा है, कौन शक्ति दे रहा है, भगवान दे रहे हैं, अलग से हमारे पास कोई शक्ति नहीं सब कुछ करने की। तो इसलिए बहुत ज्ञान ना भी हो, भगवान का शरणागत है, भगवान की भक्ति कर रहा है, पर क्यों, क्योंकि भगवान मर्जर न्याय भगवान पकड़ के उसको लिखे, इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त को ज्ञान नहीं होना चाहिए। हमने आज सुबह भी सुना था भगवान के बारे में सुनना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अगर ज्ञान बहुत शास्त्र ज्ञान नहीं है तो भगवान की शरण में हो
नहीं जा सकते, विश्वास होना चाहिए। मेन बात मुझे प्राप्त करने के लिए अन्य सभी प्रकार के साधनों का त्याग करके वह अनन्य भक्ति योग का संपादन करते हैं, जिसका अर्थ है वह भक्ति कर्म ज्ञान और तपस्या इत्यादि अव्ययों से मुक्त होनी चाहिए। अनन्यव योगेना, इसको समझाया, समझ आ गया आप लोगों को, तो स्पष्ट समझ आ रहा होगा। ज्ञान कर्म योग का आश्रय लेते हैं, तो आप कहेंगे क्या प्रभु जी, फिर आप लोग थोड़ा योगा वोगा क्यों करते हैं, शरीर को ठीक रखने के लिए करते हैं। इसका मीन इसका अर्थ ये नहीं कि आप सूर्य नमस्कार करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे तो नाम में रुचि मिल जाएगी, नाम में रुचि से नहीं मिलती, शरीर थोड़ा शरीर ठीक रहता है बस। 10-15 मिनट कर लेने से भक्तों को भक्ति में नुकसान नहीं है, ठीक है। जैसे भक्त अगर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जो आवश्यक है वो करना है, लेकिन भक्ति भावना यही रहती है कि अंत जो करता हूँ मैं भगवान पे ही निर्भर हूँ, चाहे सूर्य नमस्कार करूँ चाहे कुछ भी करूँ, स्वस्थ मैं ऐसे ही हूँ, देखूँ कि कृष्ण कृपा करें, भजन कर पाए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे नाम रुचि प्राप्त हो जाएगी, नाम रुचि तो भगवत कृपा से ही प्राप्त होगी, वैष्णव की कृपा से ही प्राप्त होगी। यह कहा गया है यत् कर्म फिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत् योगेन दान धर्मेणा श्रेयो भीर तेरेरपि सर्वं मद भक्ति योगेना मद भक्तो लभते अंजसा। अच्छा मतलब आसानी से स्वर्ग अपवर्ग मध्यामा कथंचित यदि वांछति। अगर आप लोग ध्यान दिए हो तो ये श्लोक जो मैं बता रहा हूँ, ये इसका अनुवाद पढ़ेंगे, ये प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी कोट कर दिया, जो भक्ति जो आपको अन्य कर्मों करने से मिलेगा वो भक्ति करने से मिल जाता है। याद है मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था वही चीज, भले प्रभुपाद जी संस्कृत में ही कोट करी है लेकिन स्पष्ट जिक्र है कि आचार्य की टीका से लिया। इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योग दान धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती हैं, मेरा भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे एक शब्द है कथंचित यदि वांछति, अर्थात ऐसा नहीं है कि भक्त को स्वर्ग जाना ही पड़ेगा, अगर उसकी इच्छा है तो जा सकता है, समझ गए, अगर वो मुक्ति चाहता है तो मुक्ति प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं कि जाना ही पड़ेगा, नहीं चाहेगा तो सीधे भगवान के पास, चाहेगा तो क्रम से मुक्ति होगी। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यदि मेरा भक्त किसी न किसी तरह स्वर्ग जाने मोक्ष या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा करता है तो वह ऐसे वर्ग सरलता से प्राप्त कर लेता है। जैसे आप सब जानते हैं कृष्ण बलराम जब मथुरा गए थे तो उनको माला पहनाया एक व्यक्ति ने, क्या नाम था उसका, सुदामा। भगवान ने कहा एक बार माला पहनाया, भगवान ने कहा ठीक है तुम आप इस जीवन में सुखी रहोगे और मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो आप देख सकते हैं कि भगवान बहुत कृतज्ञ हैं, एक माला पहनाने से इतना लाभ हो रहा है, जीवन भर रोज माला पहनाए तो कितना फायदा होगा। लेकिन बात यहाँ पे मुख्य बात जो ये है वो ये है कि भक्त भगवान से प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हृदय में अगर कुछ भौतिक इच्छा है तो भगवान उसको भी पूर्ण करा देते और कराते भी हैं, सिर्फ भक्ति का ह्रास नहीं होता है, भक्ति अपने अपनी स्थिति में रहती है, वो इच्छा अपने आप भगवान धीरे धीरे साफ करते उसको देते भी हैं, हृदय भी साफ करते रहते हैं। तो बात ये उन लोगों के लिए कि यदि वो चाहते हैं, अगर अर्थात शुद्ध भक्त नहीं चाहते यदि चाहते हैं तो वो आराम से मिल जाएगा, स्वर से प्रयास करने की जरूरत। श्रीमद् भागवत में बताया गया है 11:20-32 तक 33 मोक्ष धर्म में नारायणीय भाग में ऐसा कहा गया है। देखिए प्रभुपाद ने कोट किया ना ये श्लोक, अभी पढ़ा था ना आपने, ये वै साधनम संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय। तो इसको समझाने की जरूरत नहीं, खाली मैं पढ़ दे रहा हूँ। चार पुरुषार्थों में जो विभिन्न साधनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है वह बिना किसी प्रयास के उस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है जो भगवान नारायण की शरण लेता है, जो सभी की शरण है। और इसीलिए दिखा रहा हूँ किस प्रकार से प्रभुपाद जी किस प्रकार से देखिए आचार्य जी का एकदम साथ मिलेगी तरफ कितनी मेहनत की है बताइए, एक एक टीका को देखा, हाँ कभी बलदेव विद्याभूषण कभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी पूर्ववर्ती आचार्य की टीका को ही लेके चलते फिर भी संसार बंधन को पार करने का क्या तरीका है, प्रश्न उठा रहे हैं। कह रहे हैं संसार को पार पाने के मार्ग में के बारे में प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि बिना उस साधन के भी मैं स्वयं ही उनको पार हो जाता हूँ। मतलब भक्तों को इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस श्लोक को विचार करें तो भगवान के भक्त मृत्यु संसार से पार होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं और अपनी चेतना को कृष्ण में आविष्ट कर रहे हैं। अंतर देख रहे हैं आप, वो खाली कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहे हैं और बाकी कृष्ण अपने आप सारा कुछ करें। मेक सेंस टू यू, डिफरेंस समझ रहे हैं ना। अन्य लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, क्या है वो, भुक्ति मुक्ति वांछा सकल या शांत कृष्ण भक्त निष्काम अति शांत। आप मुक्त करना चाहो तो ठीक, जगत में रखना चाहो तो ठीक, हमें केवल आपके चरणों में प्रेम चाहिए। नेचुरली जब भगवान चरणों में प्रेम होगा, जैसे यहाँ भगवान बता रहे हैं, ऐसे भक्त लोग पहले अपने आप चले गए, तो इसलिए व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए मैं जो है भगवान के पास जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। हमें केवल ये चिंता करनी चाहिए कि क्या मेरा अगला क्षण कृष्ण की सेवा में नियोजित हो रहा है कि नहीं, उसके बाद क्या चिंता करना चाहिए, अगला क्षण हो रहा है कि नहीं, फिर अगला क्षण हो रहा है कि नहीं। और भक्त को बुद्धिमान होना चाहिए, मान लो कोई सेवा नहीं तो भागवत पढ़े, गीता पढ़े, भक्त चर्चा करे, कीर्तन करे, कुछ प्रचार करे, ऐसा नहीं कि सर पे तलवार लगे तो व्यक्ति खड़ा रहे आपके ऊपर क्या सेवा कर रहे कि नहीं कर रहे। खुद व्यक्ति को अन्य दिमाग लगाना चाहिए मैं कैसे कृष्ण की और अन्य रूप से सेवा कर सकता हूँ, कृष्ण की अर्थात कृष्ण की और गुरु की और वैष्णव की, ठीक है, ऐसा नहीं केवल कृष्ण की व्यवस्था, बस वही तो आएंगे बचाने की, वैष्णव थोड़ा आएंगे बचाने के लिए, ऐसा नहीं सोचना। मैं स्वयं ही उनके संसार उनकी सागर कतराता हूँ, तो मतलब भक्तों को पार पाने की चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान ही आश्रय है। यहाँ से समझ लेना चाहिए कि भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम होता है, ज्ञानियों के प्रति नहीं। क्या दर क्लेशों तक दर्शते शाम अव्यक्त आसक्ति, समझो अवक्त अवक्त में आ सकते हैं उनको क्लेश मिलता है, लेकिन जो भगवान में आ सकते हैं भगवान उनका स्वयं उठाते हैं। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, माइक भी पूछ लीजिए।
कई बार घर कुछ सेवा की बात होती है तो ऐसा कहते हैं कि जब आएगी तो सेवा ही है,
सभी को सेवा है, सेवा अर्थात मन वचन कर्म से कोई भी कार्य हम भगवान के लिए करते हैं सब सेवा।
तो हमारे को प्रैक्टिकली जैसे गीता है तो उस दिन में खाली जपा या रीडिंग ऐसा या कुछ रचनात्मक कार्य भगवान,
सभी कुछ प्रैक्टिकल। देखिए प्रैक्टिकल सेवा मतलब जो जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मंगल आरती जाना भी प्रैक्टिस है, सभी का प्रैक्टिस का उद्देश्य है मैया वेशित चेतसा। अभ्यास ये है कि अपने मन को हम बार बार विभिन्न कर्मों के द्वारा भगवान की सेवा में लगाएं। सारी चीज़ें सेवा हैं, चाहे आप मंदिर की कोई भी सेवा कर रहे हैं या घर में भी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, मेन बात है सेवा का मतलब है सेवा के सेव्य हैं उनको प्रसन्न करने का उद्देश्य होना चाहिए। सेवा मतलब है जो सेव्य हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम उनको प्रसन्न करें। चाहे आप सर्विंग कर रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, सर्विंग भी हम मैकेनिकली कर सकते हैं, जपा भी मैकेनिकली कर सकते हैं, सब कुछ मैकेनिकली कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए जीवात्मा को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, साधना में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि कृष्ण प्रसन्न हो। जैसे मान लीजिए हम जब ध्यान पूर्वक क्यों करते हैं, क्योंकि कृष्ण से अधिक प्रसन्न होते हैं, तो अगर आप ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कर रहे हो तो ये प्रयास कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान उसमें अंतर हो जाता है। जो अजय बाबा जब कर रहा है उसको भी लाभ होगा, लेकिन जो ध्यान पूर्वक कर रहा है उसको और लाभ होगा। शास्त्र पढ़ना तो पढ़ रहा है इसलिए नहीं कृष्ण प्रसन्न होंगे, उनको और लाभ होगा। ऐसे ही पढ़ेगा अरे गुरु जी ने बोला है तो कर रहा हूँ तो भी लाभ होगा, लेकिन एक आग्रह हो तो और उसके लाभ होगा। मंगल आरती जा रहे हैं हाँ अटेंडेंस लगानी है तो भी लाभ होगा, लेकिन नहीं कृष्ण प्रसन्न होंगे, वो साथ से नृत्य कर रहा है भक्ति कर रहा है भगवान और उससे प्रसन्न, ठीक है। श्रीमद् भगवद्गीता की जय, श्री प्रभुपाद।